نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کامیاب لوگوں کی 10 صفات، اس میں سے ہم نے پچھلی صفت کی تھی مثبت خود نظمی، خود کو سیلف ڈسپلن کرنے سے زندگی میں کیا خیر آتی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ مثبت خود جہتی. اب نام اتنا مشکل لگتا ہے تو سمجھیں گے کیا؟ تو انگلش میں کر لیں گے تو کافی اپنا اپنا لگنے لگے گا. مثبت کہتے ہیں پازیٹیو کو، خود کہتے ہیں سیلف کو، جہتی کہتے ہیں ڈائریکشن کو. پازیٹیو سیلف ڈائریکشن. اب اس لفظ کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ کسی طرف جانا چاہتے ہیں. جب آپ خود سے سوچ لیتے ہیں کہ مجھے کدھر جانا ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اور جو خود نہیں سوچتا پھر وہ کس کی مرضی پہ چلتا ہے؟ لوگوں کی مرضی پہ چلتا ہے. جس نے رستہ دیا دیا، جس سڑک پہ رش کم ہو ادھر چلا گیا. آپ امیجینیشن میں لائیں نا، ایک شخص سے ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کدھر جانا ہے. وہ کہتا ہے بس میں نے برف دیکھنی ہے، میں نے باہر کے منظر دیکھنے ہیں. کدھر جانا ہے؟ جا کے مڑے گا، او ادھر، چلو ادھر مڑتا ہوں، ادھر چلا جائے گا. تھوڑا سا آگے گیا، دیکھا دور کوئی چیز دیکھی، چلو ادھر چلا جائے. تھوڑی دیر ہوگی نا تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کھو چکا ہوگا، اس کو خود بھی احساس نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ڈائریکشن نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا، اس ٹاپک کے اندر جو چیز ہم بہت اہم پڑھنے والے ہیں، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اکیلا نہیں ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے اندر جتنا بھی ایمان آ جائے، ہمارے اندر جتنی بھی روشنی آ جائے سورہ نور پڑھ کے، لیکن رہنا ہم نے اس دنیا میں ہی ہے. تو آج کے اس ٹاپک میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ہم اپنے ارد گرد والوں کو ساتھ کیسے لے کر چلیں. تو مثبت خود جہتی، اس کی ضد کیا ہے؟ انا پسندی، سطحیت، چھچھلا پن. یعنی یہ وہ شخص ہے جو انا پسند نہیں ہوتا. اپنی انا کا مسئلہ بنا کر، یعنی بعض دفعہ ہم انا کا مسئلہ بنا کر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اب میں کر کے دکھاؤں گا، اب میں بن کے دکھاؤں گی. پھر ہم مجھے برا کہتے ہیں نا، اب بری بن کے دکھاؤں گی. جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں میں اب سرے چڑھ کے دکھاتی ہوں، تو چڑھ دیجیے. آپ چھت سے چھلانگ بھی لگا دیں تو لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، کمر میں چوٹ لگ سکتی ہے، آپ فوت بھی ہو سکتے ہیں. اگلے کو اگلا کہے گا میں پاگل تھی، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا لگاؤ. تو بعض دفعہ ہم دوسروں کے سرے چڑھتے چڑھتے اپنے کام کے بھی نہیں رہتے. اگر ہم اس کے ہم معنی لفظ ڈھونڈیں، اس سے ملتے جلتے لفظ کیا ہے؟ تو انسان دوستی، مکمل انسان اور تصوراتی. یعنی خود جہت لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ مکمل انسان ہوتے ہیں. وہ انسانوں کو انسانوں کا حق دیتے ہیں، خود کو خود کا حق دیتے ہیں، اللہ کو اللہ کا حق دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرا تجھ پہ حق ہے، وَجَسَدُكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا حق ہے، لِزُورِ کا حقن، تیرے رشتہ دار کا حق ہے. تو ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. جن لوگوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، یعنی جو اس خوبی سے دور ہے نا، ان کے اکثر جملے کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں تم لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کر لو، انہوں نے تم سے خوش نہیں ہونا. یا لوگوں کے ساتھ تم پہلے ہی وہ کر گزرو جو وہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. یعنی اوور کلیور قسم کا تصور آتا ہے اس کے اپوزٹ میں. اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم، جس کے ساتھ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور میری روح، جس کو فطرت کہتے ہیں، ان میں ہم آہنگی ہو. اور میں ایک انسان کے ناطے تمہیں بھی وہ عزت دیتا ہوں جس کا میں طالب ہوں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم اور روح بنایا نا، تو ہمارے دونوں تقاضے پورے ہوں گے تو ہم خوش ہیں. زندگی میں خوشی نام ہی اس چیز کا ہے کہ جسمانی اور روحانی طور پہ بیلنسڈ پرسن. سمجھ لیں، بعض لوگ دنیاوی چیزوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. آپ عموماً دیکھیے کہ اس اپنے اوپر لے کے سوچتے ہیں، ناروے میں آج کے دور میں کوئی آپ سے پوچھے کہ کمفرٹیبل لائف کیا ہے یا خوش کون ہے، تو آپ کہیں گے جس کے اس موٹے کپڑے ہیں. پھر دوسری بات ہے جس کے اس برف پہ چلنے والے جوتے ہیں. تیسری بات ہے جس کے اس ایک مفلر ہے. چوتھی چیز ہے کہ جس کی گاڑی کے ٹائر برف والے. 10 چیزیں گن لیں، آپ اس سے بھی زیادہ گن سکتے ہیں. پھر یہ کہیں گے کہ جس کے گھر کی ہیٹ بہت اچھی چلتی ہے. آج کل تو ہمارا دماغ صرف ہیٹ پہ اور ٹھنڈک پہ چل رہا ہے نا. اچھا، یہ سب مل جائے تو پھر آپ خوش ہیں؟ نہیں خوش. جسم کی راحت، جسم کی آسائش جتنی مرضی جمع کر لیں، اصل خوشی کب ہے؟ جب فطرت اور روح بھی خوش ہوگی. آج دنیا میں بہت کامیاب ملک، دولت مند ملک، ترقی یافتہ ملک، خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ. وجہ، ریزن. تو وجہ کیا ہے؟ کہ روح کے تقاضے پیچھے کیے. اس کے اپوزٹ دیکھ لیجئے، پیاس لگتی کوئی نہیں، रोज़ा मुश्किल ही नहीं? मुझे तो नहीं ठंड लगती, ये इतने कपड़े के चढ़ा के लोग जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अंदर गर्मी है, अंदर जज्बे है, अंदर जोश है। चंद कपड़ों में भी इस पूरे विंटर को वो लोग गुजार देंगे जिनके अंदर गर्म जोशी होती है। ठंड किसको लगती है? मोमन जट फारिक बैठा होता है। पाकिस्तान में भी कहते हैं काम करो, अभी देखना गर्मी लगेगी। जो बेकार बैठे होते हैं ना, उनके जिस्मानी तकाजे बहुत उभर जाते हैं। अब ये मसला हो गया, अब नाक बहने लग गई, अब बच्चे को उधर ले जाओ वो जो, और जो कहा बच्चे को ठंड लग रही, चलो जाओ यहाँ से लेके वहाँ तक 10 चक्कर लगा के आओ, जिसम गर्म हो जाएगा। तो ज़िंदगी में ये दोनों तकाजे साथ लेकर चलेंगे तो फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे मुस्बत खुदजहती क्या होती है? अगर मैं तुम्हें जीतने में मदद दूँ तो फिर मैं भी तो जीतूँगा। जब फितरत जीतती है तो सब जीतते हैं। यानी इंग्लिश में मैंने एक कोटेशन बताई थी नूरुल्लाह नूर में, साथियों को वो याद आ रही है। एक टर्म है विन विन, सूरह यूसुफ में भी इसका तذکرہ किया था मैंने, मुझे याद है तफसीर में, कि तुम भी जीतो हम भी जीते हैं। इंग्लिश में लोग कहते हैं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये है खुद जहती। देखो मैं आपको तंग नहीं कर रही, मैं भी जी रही हूँ, आप भी जिए। मैं आपको बदर नहीं करती, आप मुझे बदर नहीं करते, सारा दिन हम इस निज़ाम पे चलते हैं। आप देखें ना नीचे रोड पर कितनी गाड़ियाँ हैं, तुम भी चलो मैं भी चलती हूँ। अगर आप ये कह देंगे ना मैं उस दिन गाड़ी चलाऊंगी जिस दिन रोड पर कोई गाड़ी नहीं होगी, तो आप जहाँ जाएंगी वहाँ आपको दुकानें भी बंद मिलेंगी। मुस्बत खुदजहती क्या है कि लोगों में रहते हुए ना दूसरे को नुकसान दें ना अपना नुकसान करें, जिसको कहते हैं कि ना हक मारना और ना, नहीं किसी का हक भी नहीं मारना तो मैंने अपना भी नहीं छोड़ना। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक वक्त ऐसा आया कि सफ में खड़े होने की बात थी, तो अब हुक्म क्या है कि दाएं हाथ वालों का ज़्यादा अजर है, जो पहले आया वो आगे आके खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दाएं हाथ पे आना था, तो एक बच्चा था तो वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हो गया। बच्चे से मेरा यंग लड़का था। थोड़ी देर बाद एक बुज़ुर्ग आए तो कहा कि बेटा तुम मुझे ये जगह दे दो। बाद में आए थे लेकिन जगह वो मांग रहे थे जिसमें ज़्यादा अजर था, फजीलत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से कहा कि देख लो तुम्हारी चॉइस है, हक तो तुम्हारा ही है, लेकिन यह है कि तुम देना चाहो तो दे दो। कहेगा नहीं मैं नहीं ये दूंगा हक उनको, यह मेरी नेकी है मैं नहीं दूंगा। बात समझ गए? क्योंकि मैंने कोशिश की, मैं वक्त से पहले आया कि मैं दाईं हाथ साइड पर नमाज़ पढ़ूँ, मैं पकड़ा हो गया। तो सम टाइम अपना हक लेना पड़ता है। इसी तरह से आप देखिए कि जब तक मैं और आप अपनी ज़ात का हक नहीं पहचानेंगे, हम कभी किसी से अपना हक नहीं ले सकेंगे। देखिए मैं दावा ही नहीं कर रही कि ये सेलफोन मेरा है, तो किसी के हाथ में देकर मैं उसे मांगूंगी कैसे? ये लिखे मिसाल, आपकी चीज़ किसी के हाथ में चली गई लेकिन आपको एहसास ही नहीं, तो आप मांगेंगे? और अगर आप पहचान ही नहीं रहे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। मेरी चीज़ किसी के हाथ में हो, मैं कहूँगी ठहरिए ठहरिए, एक्सक्यूज़ मी सर, ये मेरा है, ये मेरा जूता है, ये मेरा पर्स है। बिल्कुल इसी तरह सम टाइम हम अपनी ज़ात का जो हमारा एक राइट होता है ना, उसको दूसरे को देने में इस चीज़ का एहसास ही नहीं रखते कि उसने हमारी कोई चीज़ ले ली है। बात समझ के? नहीं, बात लोग बेइज्जती कराई जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इज्जत तो बड़ी कीमती चीज़ थी। स्टॉप हेयर, लिमिट्स, ज़रा ठहर जाएं आप, मैं बात कर लूँ आपसे। और स्पेशली हमारे इंडो पाक कल्चर में मैं कहती हूँ तरबियत का इंतहाई नाकस और भुंदा तरीका है, जिसका ऑपोजिट फिर वेस्ट ने बहुत ही ऑपोजिट किया, एक्सट्रीम पे चले गए। हमारे क्या कहते हैं, चुप कर जाना, बोलना नहीं, सास जो करेगी करने देना और जो मियाँ कहेगा चुप चुप, बस चुप चुप। यानी ये गिल्ट के साथ लड़की को ससुराल में भेजते हैं। अच्छा ठीक है, अब वो क्या गई, अच्छी भी सुनी बुरी भी सुनी, अब आज भी सुनी कल जाके रो लिया अंदर कर लिया, फिर कहा चलो मुझे तो सवाब होगा। भाई आपको तो सवाब होगा, तो जो आपके साथ ज्यादती कर रहा है उसको गुनाह नहीं हो रहा, ठीक है? हक नहीं लेते सारी ज़िंदगी और आखिर में बीमारियाँ कुड़ कुड़ के जल जल के। एक होता है कॉम्प्रोमाइज़ और एक होता है सेक्रीफाइस। कॉम्प्रोमाइज़ के कि आप अपने हालात को मुख्तलिफ देख कर सेट होते हैं और खुश भी रहते हैं, इट्स गुड, ये होना चाहिए। बट सेक्रीफाइस के कि आप मुखालिफ माहौल में जी भी रहे और जल कुड़ रहे हैं, वो नहीं ठीक, वो फिर सेल्फ किलिंग है, वो खुदकुशी है। तो बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि ज़िंदगी में कामयाब लोग जो होते हैं ना, ये मुस्बत खुदजहती के मालिक होते हैं। वो ज़िंदगी के मानी तलाश करने के लिए अपनी ज़ात से परे जाने का फ़न जानते हैं। वो तमाम चीज़ों को यकजा करके ख़ुद को एक मुकम्मल फ़र्द की तरह देखते हैं, कहते हैं मैंने इनकम्प्लीट इंसान नहीं बनना। अच्छा वेस्ट की मिसाल कैसे दी कि ओवर राइट्स हो गए, मेरे राइट्स क्या हैं, ससुराल की खिदमत तो नहीं है ना फ़र्ज़, मियाँ को रोटी पका के देना कोई फ़र्ज़ तो नहीं है ना। यानी फिर यहाँ तक कि इंसान कोर्ट तक पहुँच जाता है अपने हक़ लेते हुए। ज़िंदगी में कामयाबी क्या है कि जो बंदा ये कोशिश करे कि वो दूसरों के दिल में घर कर ले, मोहब्बत से इनको जीत ले, इनकी सारी हमदर्दियाँ हासिल कर ले, लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करनी। सीधी सी बात है, बेइज्जती नहीं करनी मैंने अपनी। देखिए रुक जाइए इधर, कुरान में एक आयत है सूरह बकरा की याद आ गई, केवल हुरुमातु क़िसास। अब वो मफहूम तो उसका बिल्कुल जंग के तनाजर में है ना, मक्का और मुसलमानों के बीच में कहा कि देखो इज़्ज़त बराबर की होती है, अगर ये हुरमत के महीनों की इज़्ज़त करते हैं तो तुम भी कर लो। लेकिन असल में वो ज़िंदगी का एक बड़ा गहरा असूल है कि इज़्ज़त करो, इज़्ज़त लो। बेइज्जती करके आप कितने दिन इज़्ज़त लेंगे? आप सच बताएं, आप अपने बच्चे को रोज़ टोकें किसी के आगे, उसके दोस्तों के आगे, उसकी स्कूल टीचर्स के आगे, एक दिन आपके बच्चे के दिल से आपकी चीज़ निकल जाएगी? असल बात क्या है कि इंसान अपनी ईगो को हर्ट ना होने दे, क्योंकि इसके बाद बंदा अपनी वो जिसको कहना चाहिए ना कि इंसानियत, वो सेल्फ रिस्पेक्ट से गिर जाता है। मैं आज़ाद हूँ, मेरी माँ ने मुझे 9 माह पेट में रखा, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। देखिए वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, दिलाता है 1,000 सजदों से आदमी को निजात। ये बहुत ज़रूरी है। आप कहते फतह क्या है? दूसरे को मारना या दूसरे को बिल्कुल हरा के खुद उसके ऊपर खड़ा होकर नारा लगाया आई एम द विक्टोरियस? नहीं, असल फतेह कौन है? वो एक बहुत प्यारी सी पोइम भी अल्लामा इकबाल की उर्दू की, जिसका एक खुलासा कि असल फतेह वो जो दिलों को फतह कर ले। और याद करें, आज एक चीज़ अपने दिल को यकीन दिला के उठिएगा, अगर अल्लाह सुबहान ताला ना चाहे कोई मुझसे खुश नहीं होगा। दूसरों को खुश करना है, पहले मुझे इस बात का यकीन रखना है कि मेरा अल्लाह भी मुझसे खुश है कि नहीं। अगर अल्लाह आपसे खुश है ना, जैसे कहते हैं ना, रब राजी तो जग राजी, अल्लाह को नाराज़ करके आप कभी दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते। आज के बाद इसकी कोशिश भी ना करें, अभी गिव अप कर दें, सॉरी आई कैंट, ये नहीं हो सकता। तो मुस्बत खुदजहती क्या होती है? एक फैले हुए मजबूत हाथ की तरह, जो किसी को सहारा देने के लिए फैलाया गया हो। कामयाब आदमी जानता है कि इस दुनिया में इस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक हर इंसान के पेट में रोटी ना हो। कामयाब लोग दूसरों को भी बनाने में मदद देते हैं, अपने फायदे के लिए नहीं जीते सिर्फ, वो दूसरों की भी दिलजोई करते हैं। वो खुद नहीं उभरते, दूसरों को भी उभारते हैं, वो दूसरों के साथ तआवुन करते हैं। और याद रखिए कि खुदजहती घर से शुरू होती है, फिर ख़ानदान, और ख़ानदान से फिर मोहल्ला, इलाका, दोस्त, साथी, और आगे से आगे जाएंगे। बस आप देखिए कि क्या एक अकेला शख्स टीम बन सकता है? अकेला एक शख्स जाके कहीं मैच जीत के आ सकता है? नहीं जी सकता। हमें लोगों में रहकर अपना आप मनवाना है। मेरे वालिद बहुत मिसालें ऐसी देते थे, तो उन्हीं की मिसाल है। कहते थे कि अपना टेस्ट देना ना भूलो। जैसे आप हलीम बनाए ना, जिनको पता है उनको पता लग जाता है इसमें गेहूँ कम है, इसमें चने की दाल ज़्यादा हो गई, गोश्त ज़्यादा है ना, हर चीज़ का एक टेस्ट होता है। तो आप अपने घर में, अपने इर्द गिर्द में अपना टेस्ट ज़रूर दें। ये ना कि मेरे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन आप देखिए ना कि जैसे चने की दाल है, वो कहती है चलो मैं गोश्त का टेस्ट दे दूँ, नहीं दे सकती, वो दाल ही रहेगी। माने यस, इट्स माई लिमिट, इससे आगे मैं नहीं जा सकती। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जो लोग खुद जहती की पॉजिटिविटी में होते हैं ना, उनको अपने घर वालों से, फैमिली से, अपने इर्द गिर्द वालों से बहुत मोहब्बत होती है। इवन जो काम वो कर रहे होते हैं ना, उनको उससे भी बहुत प्यार होता है। मसलन आप देखिए ना कि आपके मुझे भूख लगी, मैं मज़े का लेके खाना खा लेती हूँ, नहीं वो कहेंगे दो और ने खाया नहीं, तीन ने खाया नहीं, सबके साथ बैठ के खाती हूँ। एक मैंने ना बहुत ही ऐसी नसीहत आमोज़ चीज़ें होती हैं तो मुझे अच्छी लगती हैं शेयर करनी। मैंने कल परसों पढ़ा कि एक लड़की थी तो उसकी शादी हुई, तो जब शादी होकर ससुराल में आती तो उसके इन लॉज भी उसके साथ होते हैं। तो जब कुछ ही दिन गुजारती है तो उसको समझ आ जाता है कि मेरा मेरी सास के साथ गुजारा नहीं होना, हमारी तबीयत बहुत फ़र्क है, हमारी मेंटेलिटी बड़ी फ़र्क है, दिस एंड देन जो भी उसने सुना सोचना था। खैर उसने अपने मियाँ से बात की कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, तो बेहतर है कि तुम मुझे अलग कर दो। तो मियाँ वही रवायती मियाँ था जो देसी मियाँ होते हैं, उसने कहा कि देखो तुम मेरी माँ है, ये है, वो ये करो। खैर उसको समझ आ गई कि मेरा मियाँ इसमें मेरा साथ नहीं देगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें अलग नहीं कर सकता, तुम्हें इधर ही रहना है, और ये हर वो। और कहती है कि सुबह शाम उसको एक ही था, उसकी सास बोलती, बेइज्जती करती। एक दिन बैठ के कहती है, कब तक मैं ये ताने सुनूंगी, मैं अपनी सास को जहर ना दे दूं। कहती मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसको कुछ खिला दूँ ताकि मैं तो जीऊँ ना, अब जहर कहाँ से लाऊँ। तो इसको ख्याल आया कि इसके अब्बू के एक दोस्त थे जो तबीब थे, जड़ी बूटियों का काम करते थे। ये उनके पास गई, जाके उनको कहानी सुनाई। कहने लगी कि अंकल जी, मैं अपनी सास से जान छुड़ाना चाहती हूँ, मुझे कुछ जहरीली जड़ी बूटी दे दें तो मैं उसके खाने में डाल दूंगी, तो दीजिएगा ऐसी कि मेरे पर नाम ना आए। खैर वो अक्लमंद था, उसने कहा कि ठीक है बेटा, फिक्र भी ना करो। अंदर गए, कुछ चीज़ें ले लू कर आए। कहने लगे देखो, अगर मैं उनको शुरू में ही जहर वाली जड़ी बूटी दूंगा तो वो तो एक ही दिन में मर जाएगी, तो फ़ौरन शक होगा जब पता होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अभी ज़रा हल्की चीज़ देता हूँ, बस तरीका उसका ये है कि तुमने उसको अपनी सास को बड़े प्यार से और बड़े हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है कि उसको शक भी ना हो, और कुछ दिन जब वो आदी हो जाएगी ना फिर मैं डोज बढ़ाता जाऊँगा। कहने लगी अच्छा ठीक है। तो उसने साथ कहा कि देखो, जब भी तुम्हारी सास बीमार हुई या मर जाएगी तो यकीनन शक होगा ना, और तुम से लड़ रहे हो, तुम्हारा आपस में तालु ठीक नहीं, तो सबसे पहले तुम पे बच जाएगी। कहती ये भी ठीक है। कहने का फिर ऐसा करो कि ये जो बीच के दिन है ना, जिसमें ज़रा मैं कम खतरनाक गोली दे रहा हूँ, तो तुम ज़रा ना सास के साथ ज़रा जब दो थोड़ी देर बैठ जाया करो, फिर उसके पाँव दबा दो, फिर जब वो कुछ तुम्हें ताने शाने दे तो तुम आगे से हंसती रहा करो, तो सारे फैमिली वालों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे तो अपनी सास के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है ओके, फिर आखिर में मर जाएगी ना, कहा मर जाएगी। अब आगे मुझे लगता है आप समझ गए हैं कहानी, शायद आप में से भी किसी ने ऐसा किया हो। कहने का मतलब ये कि वो खैर जब गई और फिर वो जड़ी बूटियाँ उसने उसको खिलानी थी, तो अब वो आगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी, तो उसने कोई चीज़ पकाई तो बड़े प्यार से उस अपने अंकल के कहने पे ले गई, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। तो सास को भी बड़ा लगा अजीब कि अच्छा अब आज मेरे लिए, अब फिर बैठ गई मैं आपके पाँव दबा दूँ। एक हफ्ता 10 12 20 दिन की बात थी, सास के साथ गहरी दोस्ती हो गई। अब वो अंकल जी के पास गई कि अंकल जी अब सुनाए, मेरी सास मर तो नहीं जाएगी। कहा नहीं मरना नहीं है, असल बात यह है कि जब ये पहले तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ज़रा सा करती थी ना तो तुम तुनक जाती थी, तुम्हें तरीका नहीं आया उसे हैंडल करने का, वही सास है वही तुम हो, तुम्हें डर ये पड़ गया कि वो मर ना जाए, कल तुम उसको मारने आई थी। तो इंसानी रिश्तों में याद रखे, देखिए खून के रिश्ते हों या शहर के हों, माँ बाप के घर से जो मोहब्बतें मिलती हैं ये अपनी होती हैं, लेकिन जो ससुराली मोहब्बतें होती हैं ना ये मांगनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ जो असल टॉपिक है, ये मांगते वक्त अपना अपनी छोड़ना, जब मैं रही नहीं तो मुझे मानेगा कौन, बात समझ गया। यानी हम गलती क्या करते हैं, दूसरों को मनाते मनाते खुद को छोड़ देते हैं, ये खुदकुशी है, सेल्फ किलिंग है ये। इससे तो बहुत बेहतर है कि आप उनको छोड़ दें, लेकिन एक मर्द के सिरे चढ़कर आप अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करें, वल्लाही। अभी शायद मुझे नहीं लगता मैं आपको समझा पाई हूँ कि फ़र्क कितना बारीक है। एक तरफ खुद जहती मैं बता रही हूँ, सबको साथ लेकर चले, यानी हल ये नहीं है कि आप अकेले रहें, सबको अलग कर दो, सबसे अलग हो जाओ, मैं अलग जा रही हूँ, नहीं, उसी घर में रह के आप खुश हों। जैसे मुझे एक फैमिली की कहानी याद आ गई, तो वो एक जो जिसने मेरे साथ बात की वो कहती है कि मेरी सास को मैं पसंद नहीं हूँ, शायद इसलिए कि मैं दूसरे ख़ानदान से आई हूँ, और मेरी जिठानी करती कराती भी कुछ नहीं पर मेरी सास उनसे बड़ी खुश है। अच्छा जी, फिर क्या कोई जादू करती हैं या कोई उनके ऊपर उन्होंने तवीज़ की हमें? लेकिन मैं उस फैमिली को करीब से जानती थी, तो जब मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया ना, असल बात पता क्या थी, वो जो सास थी, हर बंदे का एक वीक पॉइंट होता है, यहाँ मैं वो बता रही, आप सिर्फ अगले बंदे का वीक पॉइंट पकड़ लें, किसी कोई जाबर नहीं है, कोई फिरौन नहीं है, वल्लाही किसी का शौहर फिरौन नहीं आज के दौर में, और अबू जहल ना हो अल्लाह ना करे, ये सिर्फ एक आप उस शौहर की बात समझ जाएं। सास की तो मिसालें मैं इसीलिए देती हूँ ना कि हम औरतों के ये दो ही बड़े इशू हैं ना, या ससुराल या मियाँ। मैंने जो उनको ऑब्जर्व किया ना, तो उनकी सास में एक दूसरों से भड़के ही बात थी, तारीफ, क्योंकि मेरी तारीफ वो चाहती थी, मेरी बहुएं मेरी तारीफ करें। अच्छा ये जो लड़की थी ना, ये सारा दिन काम करती थी, जैसे हमारे कल्चर में बड़ी मशरकी बहुएं करती हैं, पर ये अपनी सास के साथ उस तरह बेतकल्फी में दोस्ती नहीं करती थी। इसके बरक्स वो जो जिठानी थी ना, उसको पता था मेरी सास को तारीफ पसंद है, जहाँ चार लोग बैठे ने, अम्मी जी बड़ी अच्छी हैं। अच्छा वो अम्मी जी, वो दोस्तों के जाने से पहले अम्मी जी तक बात पहुँच चुकी होती थी, अम्मी जी उसे खुश थी। मैं खुद गवाही दे सकती हूँ, ख़ानदान में ऐसी औरतें हमारे भी कि जो सिर्फ बातों से अपनी, और ये नहीं कि वो खुश है, वो अक्लमंद थी जिठानी। मैंने इसे कहा तुम भी अपनी सास की तारीफ शुरू कर दो, कभी दिल ही नहीं करता। अब दिल ही नहीं करता, यही अजर है, साथ लेकर चल। जीना एक आर्ट है, अल्लाह की कसम, जिसने जीना सीख लिया वो बादशाह। कभी आपने नहीं सोचा कि एक बंदे को सारे ही रिश्ते अच्छे मिले? कुछ लोगों को देख के आपको लगता नहीं कि ये कितने खुशकिस्मत हैं, इनको सारे ही बड़े अच्छे मिले। इनके माँ बाप भी बड़े अच्छे हैं, इनके भाई बहन भी बड़े अच्छे हैं, ये बड़े मजहबी घराने में पैदा हो गए, फिर इनके शौहर देखे इनके कितना पीछे फिरते हैं, और इनकी सास भी इन पर कोई जुल्म नहीं करती, और इनकी नंदों के भी कभी कोई हमने ताने नहीं सुने, और ये सारे। कभी आपने ऐसा कोई इंसान देखा हो ना खानदानों में होते हैं, तो आप ज़रूर सोचिए कि फ़र्क है, थिंकिंग का फ़र्क है। मैंने बल्कि आपकी ये सीरीज़ अब ख़त्म होने वाली है, अगली भी सोच ली है आपके लिए इंशाल्लाह। 13 पॉइंट लिखाने हैं आपको मेंटली स्ट्रांग लोगों के लिए, बल्कि उसको एक लेक्चर में करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि एक सीरीज़ रिकॉर्ड करते हैं कि जहनी तौर पे मजबूत बंदा और जहनी तौर पे कमज़ोर बंदा, इसमें फ़र्क क्या होता है। और वल्लाही इस वक्त हमारा पाकिस्तानी देसी कल्चर में सिर्फ 80% लोग, औरतें कमज़ोर जहन की हैं, वी आर नॉट मेंटली स्ट्रांग पीपल। तो बहरहाल वो तो अब ये एक आधा पॉइंट और है हमारा रह गया है, उसके बाद वो जब भी मौका मिलता है तो शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ वापस आ जाइए कि अगले को लगे कि आप उसकी मान रहे हैं, बट असल में आप अपनी मान रहे हो, और अपनी कौन सी, जो ठीक हो। कभी किसी इंसान की गलत ना माने, वरना वो आपसे अगली भी गलत मनवाएगा। मेरी शादी हुई जब नई नई तो मैं ह्यूस्टन गई, और वहाँ जाके फिर 2-3 महीने बाद ऐसी क्लासेस वगैरह शुरू हुई, मैं अपनी सास के साथ ही शुरू हो गई, वो पढ़ाती थी एक मस्जिद में, तो शुरू में मैं भी उनके साथ बैठने लग गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक लड़की आई हमारे पास ना, जब हमने अपनी ये बकायदा क्लास शुरू की, वहाँ एक जगह ली और दिस एंड दैट, बिल्कुल अल्ट्रा मॉड किस्म की यंग लड़की आई हमारे स्कूल में ना। किसी ने उसको बताया कि यहाँ कुरान क्लास होती है, वो आ गई हमारे पास, ठीक है। खैर फिर उसके बाद उसको अच्छा लगा, फिर उसने ज्वाइन किया। फिर एक दिन वो आई अंदर मेरे पास और खूब रोई, कहती मैं पाकिस्तान से आई हूँ शादी करके, ये सच्चा वाक्य है, मेरी आज भी आंखों में उसकी शक्ल है, दुबली पतली गोरी चिट्टी लड़की थी। कहती मैं पाकिस्तान से अलहुदा का कोर्स करके आई हूँ, वो वहाँ से एक फारिग शुदा स्टूडेंट थी और मंगनी हुई, और अमेरिका में मियाँ रेस्ट बॉर्न एंड रेस्ट थे, तो वो शादी करके तो उसको अमेरिका आना था। तो मुझे कहती पता चला आप क्लासेस ले रहे हैं, ये वो, तो मैं आई हूँ। मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, अगर आपने अलहुदा का कोर्स किया हुआ है तो दैट मीन आपने लफ्जी तर्जमा तो कम अज़ कम याद किया होगा ना, और आपकी बेसिक। और हमारा वो पहला सेशन था, तो मैं तो हमेशा जहाँ जाती हूँ वहाँ पहले से पढ़े हुए लोगों को कहती हूँ आए मिल के करें। मैंने उसे कहा कि आप हेल्प करें, कहती मैं हेल्प करूँ कैसे, मैं तो बहुत दूर हो गई। और पेंटें पहन के आती थी वल्लाही वो लड़की, इतना उसका हुलिया ख़राब था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अबाया पहन ले, हमें क्या लगे आप कहाँ हैं, लेकिन आपको मैंने देखा कि इल्मी तौर पर आप जितने इधर मौजूद हैं उनसे तो बेहतर है ना, और जब आप कुरान पढ़ी हुई हैं तो मैं आपसे फ़ायदा क्यों ना। उसने कहा ठीक है। यंग बच्चियों की हमने क्लास शुरू की, उसमें वो एज अ ग्रुप लीडर आ गई, साथ पढ़ती भी थी पढ़ाती। फिर वो वक्त के साथ साथ जब खुली, फूट फूट के रोती थी, कहती कि मैं आज भी उस दिन को पछताती हूँ। कहती मैं पाकिस्तान में कोर्स के बाद निकाब शुरू हो गई थी करना, अबाया पहनती थी फिर निकाब करती थी। फिर जब मेरी मंगनी अमेरिका हुई तो मुझे इर्द गिर्द ज़रा से वहम खौफ डालने लोगों ने शुरू कर दिए कि अमेरिका जाएगी, वहाँ कौन बुरका पहनता है, ये है वो है। खैर कहती जब मैंने आना था तो जैसे एक परसेप्शन था, ये वक्त मेरे पे भी गुजरा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे तब भी थामा। तो कहती कि मैं जब आई तो मुझे मेरी कुछ प्यारों ने, अपनों ने कहा नहीं अमेरिका में जाके तो सब पेंटे पहनते हैं, तो मैं पाकिस्तान से कुछ पेंटे भी छुपा के ले आई अपने सामान में, कि अगर पहननी पड़ी तो वहाँ कहाँ से लूँगी। चले लोग सोचे अमेरिकन एयरपोर्ट वाले आपको इमिग्रेशन नहीं दे सकते जब तक पेंट ना पहनी हो, बेकार बात है, इल्ज़ाम है उनके ऊपर। खैर फिर कहती उसके बाद जब मैं इधर आई तो जाहिर है कि जिस भी जो शशोपंज में थी मियाँ वो अमेरिकन माहौल के पले हुए थे। कहती कि मेरे मियाँ ने कहा देखो ना अब ये तो फिर पाकिस्तान तो नहीं है, ये है वो है, तो मुझे कहते हैं कि तुम ना निकाब उतार दो, पहली चीज़ उसकी ये हुई। और जब वो बात सुनाती थी तो मैं यकीन नहीं करती थी उसकी बात पे कि ये कभी ये करती भी होगी। कहती मैंने सोचा कि देखो ना अब शादी नई नई हुई है, अभी तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना कि मैं अपना घर बनाऊं, और दूसरी बात ये है कि अमेरिका में नए मुल्क में आई हूँ, मैं इस मुल्क को समझूँ। तो कहती मैंने अपने आप से कहा कि चलो मियाँ की खुशी भी तो स्वाब ही है ना, तो मैंने निकाब उतार दिया। फिर उसके बाद कहने लगी उसके बाद मैं जो हूँ ना वो आज आपके सामने हो, निकाब के बाद हिजाब गया, हिजाब के बाद में अबाया गया, सिर्फ हिजाब रखा, फिर हिजाब भी गया, फिर कहती मैंने स्लीवलेस भी पहने हैं। और अब मैं दोबारा इस कुरान से जुड़ी हूँ, चूँकि सुनती थी तो फिर रोती थी, तो कहती थी कि मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने पहली दफ़ा अपने शौहर को खुश करने के लिए निकाह बतारा था। कुरान ने तो ये 1400 साल पहले कहा था, वद्दू लव तुदखिनु फयुदखिनून, खोल के देख लीजिएगा 30वें पारे में, ये चाहते हैं कि तुम ज़रा से ढीले पड़ो। दुखन कहते चिकने को, मलाई को, ऑयली चीज़ को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना स्लिप होना, तुम थोड़े से ढीले हो जाओ बाकी ये तुम्हें खुद ही फिसला लेंगे। बहरहाल फिर उसके मियाँ को मिलवाया, बात की, मैंने कहा तुम देखो कि तुम फिक्र नहीं करो, सर से मिलवाओ। तो मैंने इन्हें कहा कि आप इनसे मिलाएं, इनकी दोस्ती कराएं। फिर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वो इतनी एहसान मानती कि अगर ये कुरान दोबारा मेरे हाथ में ना आता तो मैं, मुझे एहसास ही भूल जाना था कि मैं कहाँ थी। तो याद रखिए, मुस्बत खुद जहती क्या है, पहले अपने आप को तो जगह दें। एक और फिर मिसाल याद आ जाती है, जहाज़ में आप बैठते हैं तो वो एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, इन केस ऑफ एमरजेंसी ऑक्सीजन अगर कम हो गई तो आपके आगे ऑक्सीजन मास्क गिर जाएगा, बट वो क्या कहते हैं, हेल्प योर सेल्फ बिफोर हेल्पिंग अदर्स। अगर आपके साथ बच्चे हैं, आप छोटों के साथ बैठे, पहले अपना मास्क लगा ले, पता चले उसका लगा रहे हैं आपका जान निकल जाए। खुद जहती के खुद को जगा दें, लिखें आज के बाद मैंने खुद को ज़ाया नहीं करना, मेरी जगह है। देखिए सेल्फ रिकग्नाइजेशन ही तो काम कराती है, जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। मेरे रब ने पैदा किया, मेरी आज़ाद मर्जी है, मैं गलत बात क्यों करूँ। ये जो शराब के नशे में कोई डूबा होता है ना, वो ऐसे ही नहीं डूबता, वो पहले खुद को मारता है। तो अपनी इज्जत करना सीखे, बस सीधी सी बात है, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। फिर आप देखिए कि जब हम अपनी जगह बना लेते हैं ना, अगले को भी समझ आ जाता है ये और नहीं दबेगा। बस आप देखिए कि अभी बाहर बर्फ़ है ना, तो हम उस पर जाकर ज़ोर से पाँव मारेंगे, क्यों, हमें पता है कि हमें देखते ही बर्फ़ ने जगह छोड़ देनी है और हमने इंजॉय करना है। और अगर नीचे पत्थर हो या कोई सख्त लोहा हो तो हम ज़ोर से उस पर पाँव मारेंगे, नहीं मारेंगे, हमें पता है नीचे से चोट लगनी है। अगर आप नीचे हैं ना, हर बंदे की छुरियाँ चाकू ताने तीर का रुख आप होंगे, आप कहते हैं मैं तो इतनी सॉफ्ट नहीं, इतना सॉफ्ट होना था। आप देखें ना जिसम में हड्डियाँ ना हो, आप इसको इससे समझें, आप जिसम में हड्डी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना, आप जिसम की किसी की भी हड्डियाँ निकालें तो बीचे क्या है, मलबा। हड्डी अगर अपनी जगह छोड़ देगी या अपना आप नहीं मनवाएगी तो इंसान बिल्कुल ऐसे वो बोनलेस बन जाएगा ना। आप अपनी हैसियत पहचानें, अपना हक लें बट इज्जत के साथ। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा आपने, बस अगले को समझ आ जाएगा ये उठ गया, ये समझ गया, ये अब मज़ीद बातें नहीं सुनेगा। एक सिस्टर थी तो वो कहने लगी कि मैं थक गई हूँ अब ना, क्यों, कहती शुरू में तो शौहर ज़रा गुस्सा करते थे फिर ऊँची बोलते थे, अब तो ज़ुबान पे गाली है, अब तो हाथ भी उठ जाता है, मुझे नहीं समझ आता मेरा क्या कसूर है, मैंने तो इनकी बड़ी बुरी भी सुनी, सही इतना बर्दाश्त किया। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, ये आपका कसूर है, जिस दिन उन्होंने आपके सामने ऊंची बोला विदाउट एनी रीज़न और आपने सुन लिया तो वो कहेंगे वाह कंकर किया, 30 मार खाऊं, बस अब तो रोप डाल सकता हूँ। फिर जिस दिन आपने उनकी गाली भी सुन ली तो वो कहेंगे इसको तो अकली कोई नहीं, तो अब हाथ उठता है तो ये आपका कसूरवार है, अब हाथ उठेगा तो एकदम पकड़ लें एक्सक्यूज़ मी, और फिर अगला नहीं मारता, ये भी याद रखें। फितरत का असूल है, फितरत का असूल है, एक बच्चा दूसरे बच्चों से मार खा ले ना तो सब बच्चे उसको मारेंगे, और जो बच्चा आगे से नाहुन मारेगा ना उसको कोई नहीं मारेगा। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आप ज्यादती करो, देखिए वला तातदू, कुरान में दुश्मनों के साथ मामले में आता है वला तातदू, दुश्मनों से भी मुकाबले में तो ज्यादती ना करो, कहाँ अपनों से होगी, अपनी जगह बनाए। खुद जहती को आप एक वजीफे के तौर पर पढ़े, मैंने अपनी जगह बनानी है, मैंने अपनी जगह बनानी है, मैंने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करना, मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, उसके बाद जिए, जिए तो इज्जत से जिए। कुरान में सूरत तौबा में अल्लाह ताला कहते हैं 10वें पारे के बिल्कुल शुरू की आयतों में, आप पढ़ सकते हैं अगर लेना चाहें रेफरेंस, कि जियो तो दलील के साथ जियो, मरो तो दलील के साथ मरो। हमारा दीन दलील का दीन है। टीपू सुल्तान का एक मशहूर जुमला है, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। तो शेर बन के जिए, आप गीदड़ बन के क्यों जीते हैं, क्योंकि फिर आप अपने आप को ज़ाया कर देंगे। मैं कभी भी नहीं इस बात को मान सकती कि आप किसी की गलत बात मान के खुश हो जाएं, अगले दिन वो और उससे बड़ी गलत बात मनवाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बाज़ लोग क्या कहते हैं कि बेहतर ये है कि मैं किसी के साथ मामला ही ना रखूं। मसलन एक यंग लड़की है, मिसाल ले लेते हैं, ऐसे ही कहती मैंने नहीं शादी करनी। क्यों नहीं करनी? मियाँ जुल्म करते हैं, फिर शादी के बाद पाबंदियाँ बहुत लगती हैं। तो क्या ये अक्लमंदी है? नहीं, खुद जहती अपनी जगह बनाए। देखिए लिमिट्स को ना क्रॉस करने दें। एक कोड वर्ड लिख लें इस टॉपिक के साथ, डोंट लेट एनी वन टू क्रॉस द लिमिट्स। बस इससे आगे आप देखेंगे अगले को कुछ कहना नहीं होगा। आप भी जीते, मैं भी जीती हूँ, आप मेरी इज्जत करें, मैं आपकी करूँगी। आप मेरा भी ख्याल रखें, मैं आपका रखूँगी। आप मेरे लिए केयर करें, मैं आपके लिए तैयार होती हूँ, आप मेरे लिए तैयार हों। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, बल्कि करके दिखाते थे, रात को जब अपनी बीवी के पास जाते, यानी सोने का इरादा होता, तो खुशबू लगाते, साफ़ सुथरे पहनते कपड़े। कोई पूछता क्यों, तो कहते हैं जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए तैयार हो, इख्तमाम करे, तो बीवी का भी तो दिल करता होगा ना। अमूमा देखिए कि मर्दों में खुद नहीं इतनी सेंस होती इन चीज़ों की, औरतों में ज़्यादा होती है। तो कहते हैं कि कुरान कहता है कि अल्लाह ताला मर्दों को कहता है कि तुम्हारे भी वही हकूक हैं जो उनके हैं, जिम्मेदारियाँ वही। तो जब आप चाहते हैं तो वो आप करें, आप चाहते हैं मेरे लिए करें। और दूसरे को सबक सिखाने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं। आपको लग रहा है अगला नहीं कर रहा आपके लिए इख्तमाम, आप भी छोड़ दें। भाई क्या हुआ? ये मेरा ख्याल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अगले को समझ आ जाएगी, अच्छा जी। तो बेवकूफ़ बन के अगले को कहना कि मुझे मारो, ये दुरुस्त तरीका नहीं होता। ये चीज़ इंसान को नुकसान देती है। वुसअत ए कल्बी चाहिए, हाँ इसके लिए आपके अंदर जुरत होनी चाहिए। करें क्या? अब चंद अमली टिप्स। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे उजागर करूँ? नंबर एक, बड़े से आईने में खुद को खड़ा करें। आपने आपको देखे, जो लोग अपनी जगह नहीं बनाते ना, वो एहसास कमतरी में ही जा चुके होते हैं। मैं क्या हूँ, मुझे तो अकल ही नहीं, मैं तो पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। नहीं, आप सर से पाँव तक एक फुल मिरर्स होते हैं ना, उसमें खड़े होकर खुद को सोचें, अल्लाह ने मुझे कैसा बनाया है, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने कितनी मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो फिर किसी को हक नहीं है कि कोई मुझे लेट डाउन करे। फिर इसके बाद जब आईने में खुद को देखें, तो अपने आप से सवाल करें, मैं जैसा खुद को देखना चाहती हूँ, मैं वैसी ही लग रही हूँ? फिर पूछिए, जो मेरे माँ बाप मेरे लिए चाहते थे, क्या मैं वैसी ही हूँ? फिर इस तरह चंद बातें खुद से पूछिए। नंबर एक, अगर आपकी शादी हो चुकी है, नहीं है तो लिख लें, जब होगी तो पूछ लें खुद से, क्या एक मोहब्बत करने वाली बीवी से बेहतर भी कोई हो सकता है? क्या घर की औरत, यानी जिसको कह लीजिए घरेलू खातून या खानादारी जो भी है, एक औरत से भी अच्छा कोई घर चला सकता है? फिर खुद को आप चेक करें, हाँ मैं मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से, घर भी मेरा ख्याल है, मैं अच्छा चलाती हूँ। तो फिर अपने हस्बैंड से पूछें, आप बताएं क्या मैं एक अच्छी बीवी हूँ? अगर वो कहते हैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, ये है वो है, या आगे के सारी ऐसी होती हैं वैसी है, तो फिर आप उनको रियलाइजेशन दें कि नहीं, आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको एक अच्छी बीवी दी है। फिर इसी तरह से फजूल वक्त ना ज़ाया करें। फालतू फारिग घर बैठकर फजूल बातें सोचने वाले लोग बाज़ दफ़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके होते हैं। फिर इसी तरह फिल्में देखना, रिसाले पढ़ना, वो फजूलियात जो आपको एक फैंटेसी लाइफ में ले जाए, उससे अपने आप को दूर कर दें। अच्छी सोच और अच्छी तालीम का एहतमाम करें। फिर आप अपने अंदर चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो, तो फिर कहें, आज तक जो कुछ मैंने सीखा, आपने मास्टर किया होगा, कुछ भी किया है, क्या मैं इसको खाक में मिल जाने दूँ? यानी अपनी स्किल, दुनियावी दीनी जो भी है आपके पास, आप उसको सामने रखें, और कि मैंने अपने आप को ज़ाया नहीं करना। या ऐसे जैसे एक शख्स डॉक्टर बने और बाद में छाबड़ी लगा ले, तो उसने वो मेडिकल की तालीम की कदर नहीं की ना। फिर इसी तरह से एक और बात अपने आप से पूछें, क्या खाना, कमाना, सोना और तफरी, बस यही कुछ ज़िंदगी है? नहीं। फिर अगली बात है कि नाकामी पर तकदीर का शिकवा करने से अपने आप को पीछे करें। अगर हार जाए ना, तो खुशी से हार को माने, जीत जाए तो अल्लाह का शुक्र करें। फिर इसी तरह जो माजी में हुआ उसको छोड़ दें, और मुस्तकबिल के लंबे ख्वाब ना देखें। मुझे अपने हाल को बेहतर बनाना है। मैं यकीन करें, एक जुमला बोलने लगी हूँ, बहुत सारे लोग आज हाल से बेहाल हुए हुए हैं, अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में। ना बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, ना खाते ना पीते, ना घर में दावतों में शादियों में कमा रहे हैं, क्या बच्चों के लिए कमा रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, रात 2-2 बजे तक बाहर रहते हैं कमाई के सिलसिले में, और बच्चे की फ़ीस देते हुए भी पहले 2 गालियाँ माँ को देते हैं फिर फीस पकड़ाते हैं। वल्लाही मैं कहती हूँ कितना ना समझ है ये बाप, क्यों बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, उसके लिए प्लॉट बन जाए, उसके लिए घर बन जाए, उसके लिए गाड़ी बन जाए, तो आज तो आप उस गरीब को पैसे भी नहीं उसके पॉकेट मनी के दे रहे। चिढ़ जाते हैं लोग ना। फिर इसी तरह से कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में लफ्ज़ लिखें कि जोहदे मुसलसल, आइडियल सोचें। मैंने अपने लिए कैसी ज़िंदगी सोची थी, देखिए हर लड़की सोचती है शादी से पहले। अब हम चूंकि औरतें लड़की हैं तो हमारी मिसालें भी घरेलू। अब ये सारा लेक्चर किसी मर्दों में को मर्द दे रहा होता तो ये सारी टर्म्स वो कारोबार और बिजनेस की सोच लेता। आप अपने लिए सोचें, मैंने जैसी ज़िंदगी सोची थी क्या मेरी वैसी है। फिर अगला एक सवाल खुद से कीजिए, क्या मुझे खुद से प्यार है और क्या मुझे दूसरों से प्यार है। क्या मैं एक गैर मामूली शख्सियत की हामिल हूँ। अब देखिए कि हिटलर का नाम सुन के जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, क्या सभी को कुछ ना कुछ पता चलता है। शुरू में वो बिल्कुल एक मामूली इंसान था, तो अपने दोस्तों से कहा करता था मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मुझे बहुत बड़ी शख्सियत बनना है। अब दिन रात उसने अपने आप को ये यकीन दिलाया कि मुझे कुछ बनना है, फिर किस तरह बना ये छोड़ दीजिए, लेकिन बड़ा बंदा बन गया। जब तक आप अपने लिए कोई गोल नहीं बनाएंगे कि मुझे कल वहाँ पहुँचना है, आप कभी नहीं पहुँचेंगे। और आप देखिए कि इज्जत नफ्स इंसान के सोने चांदी से कीमती होती है। मेरी इज्जत पे आप हाथ नहीं उठा सकते, हदीस में आता है जो इज्जत बचाते हुए मर गया वो शहीद है, जो माल बचाते हुए मर गया वो भी शहीद है, जान बचाते हुए मर गया शहीद है। तो अल्लाह ताला ने आपको मुझे बहुत कीमती पैदा की है, इसलिए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम इस दुनिया में खुश रहें। फिर आप नेचर को देखें, कल मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया बर्फ़ में खेलने का, मैं ऐसी फ्रेश हो गई, मुझे ऐसे लगा कि कितना बोझ मेरे सर से उतर गया। मैंने सोचा कि हमारे इर्द गिर्द खिलौने पड़े होते हैं, हम उनसे हट के आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। तो ज़िंदगी को बहुत करीब से देखें, बूढ़े लोगों के पास बैठें। और ये भी एक टिप लिखें, किसी आपके ख़ानदान के दोस्तों में कोई बूढ़े हैं ना, बूढ़ी बूढ़ा, मेरी आदत है ये, अम्मा जी भी इधर आती है ना, मैं कभी अकेले में, तो मैं कहती अम्मा जी सुनाओ ज़िंदगी की कड़ी, फिर अम्मा जो सुनाती है ना वो मैं आपको नहीं सुना सकती, क्या बताऊँ बेटा है। आप बूढ़ों के पास बैठें, फिर उनसे पूछें, फिर आप अपने आप को तसव्वुर में वहाँ ले जाएं, जब मैं 10, 20, 15 साल बाद बूढ़ी हो जाऊंगी, बड़ी हो जाऊंगी और बड़ी होंगी, तो क्या मैं ऐसी हसरत वाली बातें किया करूंगी। फिर इसी तरह एक और टिप है कि बहुत कामयाब बंदा कोई अगर आपके इर्द गिर्द है, ख़ानदान का या माशरे का, सोसाइटी का, उससे मिलें, उनसे बताएं कि आपने ये सब कैसे लिया, आपकी ये इज्जत कैसे है, आपने अपने आप को कैसे किया वो किया। फिर इसी तरह अपनी सेहत के लिए वक्त निकालें थोड़ा सा, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी बहुत प्रैक्टिकल कामों को सामने लेके आते हैं। फिर एक छोटी सी चीज़, वक्त पूरा हो गया इसलिए मैं इसको रैप अप करना चाहूँगी, वो क्या है कि अगर आपसे कोई गलती होती है ना, और सबसे होती है, मुझसे भी होती है आपसे भी होती होंगी कि ना, तो उसको रियलाइज़ करें, कन्फेस करें। किसी बंदे से अगर आपने अपनी इज्जत करवानी है ना, तो फिर अपनी गलतियाँ भी माने कि दैट आई वॉज रॉन्ग या आई एम रॉन्ग, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल नॉट डू दिस इन फ्यूचर। और ख़ुद को यकीन दिला लें कि गंवाने के लिए वक्त नहीं है, मेरे पास एक ही चांस है, लाइफ इज़ ओनली वन चांस टू गेट जन्ना, टू प्लीज़ अल्लाह सुबहान ताला, मैं ज़ाया कर दूंगी। और इंशाल्लाह ताला अपनी कदर करें, अपने वक्त की कदर करें, अपने नफ़े नुकसान को समझें, सोशलाइज करें एक लिमिट में, और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे वो ज़िंदगी गुजारने वाला बना कि कल क़यामत के दिन मैं अपने आप को महरूम लोगों में ना पाऊँ, और ऐसा ना हो कि जैसे लोग जानवरों से सलूक करते हैं लोग मेरे से करने लग जाएं। और अपने बच्चों से प्यार करें, अपने घर वालों से कम्युनिकेशन करें, बेस्ट थिंग अपनी इज्जत बनाने की कम्युनिकेशन है। आए बैठ के बात करते हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको है मुझसे, तो मुझे भी तो आपको से होगा ना, इस तरह की बातें करते जाएं। और इस तरीके से फिर इंशाल्लाह अपनी नींद को भी मैनेज करें, नींद की कमी बेशी और रूटीन लाइफ का चेंज होना, ये भी हमारी ज़िंदगी में गड़बड़े ला देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इस्लाह फरमा दे। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.